ஞான ஸ்லோகய சக்ஷூருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஃ. வஞ்சாகல்பதருபியஸ்ய கிருபாசிந்துபியைவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமோ மகாபதன்யாய கிருஷ்ணப்ரேம ப்ரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நம்னே கௌரதிஷே நமஃ. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ. யாங் ப்ரவ்ரஜந்தம் அனுபேதமபேத க்ருத்யம் த்வைபாயனோ விரஹ காத்ரயா ஜுஹாவ புத்ரேதி தன்மயதயா தர்வோகினே தம் ஸர்வபூத ஹ்ருதயம் முனிமான். த்வைவாஸ்மி த்வைவாஸ்மி ந ஜீவாமி த்வயா வினா இதி விஜ்ஞாய ராதே த்வம் நய மாம் சரணம். हम लोग फिर गंगा के किनारे यहाँ परीक्षित महाराज 88,000 ऋषि महर्षि और सब लोगों के साथ में भागवत सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे हैं। उस जगह में हम लोग पहुंचे, उनका भी 7वां दिवस है। हम लोगों का 7वां दिवस है, किंतु पूरा हम लोग नहीं कर सके। अब फिर आएंगे, फिर 7 दिन फिर बोलेंगे। इस तरह से इसको कभी न कभी पूरा करने की हम लोग चेष्टा करेंगे। यो एक वर्ष भी इसका किया जाए तो उसमें रसस्वादन होता है। कुछ कुछ पूरी लीलाएं तो उसमें भी वर्णन नहीं, बड़े गूढ़ अर्थ इसके हैं। ये कृष्ण साधारण बालक जैसा दिखता है, किंतु साधारण बालक जैसी लीलाएं तो कर रहा है किंतु है नहीं। जितने भी अवतार हैं, समस्त अवतारों का भी मूल है, समस्त कारणों का भी कारण है। वो स्वयं आदि रहित है किंतु सबका आदि भी है, यहाँ तक कि अवतारों का भी आदि है। आप लोगों ने सुना होगा, जन्म लिया और जन्म लेते ही उतना जैसी राक्षसी का वध अपने आप हो गया। विष कालकूट अपने स्तन में मिलाकर आई उसको मारने के लिए कृष्ण को, और कृष्ण ने विष तो लिया ही, उसके प्राणों को भी पी लिया और उसको शुद्ध करके माता की गति दे दी। इसके अतिरिक्त कंस ने ब्रज में जितने भी राक्षसों को भेजा, बड़े बड़े बलवान, अपना रूप बदल सकते थे, हवा का रूप धारण कर सकते थे, पानी का रूप धारण कर सकते थे, उनको भी कृष्ण ने ऐसे ही मारा जैसे छोटे से बच्चे हो करके शक्टासुर का, अघासुर का, बकासुर का, ये सब का वध किया। ब्रह्मा जी जितने भी देवता हैं, दुर्गा काली इत्यादि, इंद्र, सबके ये आदि हैं। ब्रह्मा जी जगत का सृजन करते हैं, 4 मुख हैं उनके, और वे अपने को श्रष्टा समझ रहे थे और किस प्रकार से बछड़ों को और सखाओं को चुरा लिया, देखें ये क्या करता है। और उस समय में जितने बछड़े और गौएं थीं सब कृष्ण बन गए, यहां तक कि उनकी बंसी, उनकी लकुटी, उनकी कमली सब कुछ बन गए। जितने बछड़े थे बन गए, उनका सब स्वर बोलने का इत्यादि गुण सब कुछ वैसा हो गया। ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कंदरे में भी है और कृष्ण के साथ चर भी रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद में देखा ये सभी चतुर्मुख चतुर्भुज नारायण हो गए, उनके अपाश्य नारायण हैं, नारायण बन गए। और देखा जी जितने देवता देवी नीचे से ऊपर तक हैं सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद में देखा केवल द्विज कृष्ण है, अपने सखाओं को गईयों को खोज रहे हैं, मुख सूखा हुआ, कहां गई गईयां, कहां गए बच्चे। पर ब्रह्मा जी उनके चरणों में लौट गए और लौट करके स्तव स्तुति करने लगे, कहीं भी हमें भक्तों के घर में जन्म देना और आपके भक्तों की चरण की धूलि को मैं ग्रहण कर सकूं, ऐसा कोई जन्म दे, कीट भी हो कोई बात नहीं, यदि इस ब्रज में जन्म हमारा हो तो अच्छा है, और यदि ब्रज में ना जन्म हो तो फिर क्या हो। ब्रज में जन्म न हो तो जहां कहीं भी हो, जिस रूप में हो, यहां तक कि गोकुल में मैला कमाने वाली जमादारनियां हैं, जब मैला कमा करके आती हैं उस समय पत्थर पर रगड़ करके अपने पैरों को धोती हैं। यहां आप लोग हैं, आप लोग ये चीज शायद ना समझेंगे, कैसे रगड़ती हैं, कैसे क्या होता है, इंडिया में रहती हैं रहने पर समझ सकते, बिना जूते के चलने से पैर थक जाते हैं, मैल जम जाती है, इसलिए रोज धोते हैं। तो जिस पत्थर पर रगड़ती हैं जमादारी मैला कमाने वाली, वो मैं पत्थर भी हो जाऊं तो ब्रज की मैला कमाने वाली जमदारनियां भी अपने चरण की धूली दे दे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए और देवताओं की तो बात ही क्या, इंद्र का सुना होगा, पहले ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे और कृष्ण से कहने से फिर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा आरंभ की, और उस समय पूजा करने पर इंद्र क्रोधित हो गया और ब्रज के सब लोगों को वर्षा से डुबा दे और वज्र से सबको मार डाले, ऐसी स्थिति हुई, सब लोग कांपने लगे, ठंडा का समय, घना घोर मूसलाधार वर्षा हो रही, चारों तरफ में ब्रज डूब गया, सब लोग दौड़े आए जे इंद्र की पूजा बंद की आपने इसलिए ऐसा हुआ। कृष्ण ने छत्र के समान कानी उंगली पर उठा ली पर्वत को और सब ब्रजवासी छकड़ों के समय, गायों के समय सभी लोग उस में आए और सबको वहां पर शरण दी। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही, वज्र गिरता भी रहा, कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन के बाद में इंद्र ने देखा जैसे जैसे कहता साहब वो तो आराम के साथ में इसी गोवर्धन के नीचे छत्र छाया में है, तब उनका अभिमान दूर हुआ। किसी प्रकार से गाय को सामने रखकर ले आकर सुरभि को और फिर कृष्ण के चरणों में गिरे, क्षमा मांगा और उनका दूध से अभिषेक किया गौओं के और उनका नाम गोविंद रखा। तो इंद्र जैसे लोग, शंकर जी भागवत में भी ऐसा लिखा, शंकर जी गोपी होकर के वहां पर कृष्ण की सेवा करते हैं और एक बार संग्राम में बाणासुर का संग किया, उनकी सहायता की और कृष्ण ने उनको परास्त कर दिए और बाणासुर के हजार हाथों को काट दिया, केवल चार रख दिए। वो भी काटना चाहते थे तो उमा जी सामने आ गई और थोड़ा सा आधी नंगी हो गई, तो कृष्ण ने मुख फेर दिया और उनको प्रणाम किया और मारना छोड़ दिया। उन्होंने स्तव करके कहा, इसको छोड़ दिया, ये मेरा बेटा है, तब छोड़ा। शंकर जी भी वहां पर हार गए, इसलिए शंकर जी के भी आराध्य ही हैं, राम नाम सब समय करते हैं शंकर जी और मुक्ति देते हैं, इसलिए समस्त देवताओं के ऐसा देखने में भी समस्त देवताओं के भी देवता हैं। कृष्णचंद्र जी और बलदेव, इन दोनों को जब कंस नहीं किसी प्रकार से मरवा सका तो सोचा जी ऐसे नहीं ये मरेंगे, उनको भगवान का विश्वास नहीं था कि ये भगवान है, वो तो समझता था ये साधारण बालक है, इसलिए उनको मरवाने के लिए चेष्टा की, किंतु कोई लौट करके खबर देने नहीं आया जे फिर क्या हुआ। सोचा जे अब अक्रूर को भेज करके और वहां से कृष्ण बलदेव को बुलाऊं, और जब यहाँ आएगा तो मुष्टिक चारुण हल तोसल मुष्टिक और जितने वीर हैं हम सभी मिलकर के घेर कर उसे मारेंगे, अकेला नहीं मरेगा और दूसरी ब्रज में नहीं मरेगा, यहीं पर मारूंगा। इसलिए चलाकी चतुराई से छल करके भेजा, ये हम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं रंगेश्वर महादेव की, और उसमें धनुष यज्ञ है और बड़े बड़े वीर लोग मल्ल युद्ध करेंगे। अभी भी भारत में ऐसी रीति है, मल्ल क्रीड़ा युद्ध इत्यादि होता है, तो उसमें कृष्ण और बलदेव को बुलवाया, जिसमें बुलवाया अक्रूर जी गए कृष्ण से और बलदेव से अकेले मिले, बोले जे तो तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता देवकी और वसुदेव जी बड़े दुखी हैं, कंस उनको गाली देता है, पैरों से ठोकर मारता है और कभी कभी तो इतनी उनकी बेइज्जती करता है इसका हद नहीं, अब तो मार भी डालेगा, और तुम लोग उनके पुत्र होकर के योग्य और यहां पर बैठे हुए हो, तुम उनको मार सकते हो कंस को और अपने पिता का कष्ट छुड़ा सकते हैं मैया का, तो यहां पर क्यों। उन लोगों ने पूछा जी हमारे माता पिता तो यशोदा जी और देव ये नंद बाबा हैं। मैंने कहा जैसे ये तो देखने ऊपर से है, तुम्हारे असल माता पिता वसुदेव देवकी हैं और तुम्हारे लिए ही उनकी ये दुर्दशा हो रही है, इसलिए तुम्हारा बचाना उनका कर्तव्य है, आप जल्दी से चल करके उनका बंधन मुक्त करके उनको ये कीजिए। ऐसी ऐसी बातें कहीं जिसे दोनों को भीतर से प्रेरणा आई, उत्साह हुआ, हमारे माता पिता को ये मारेगा। अच्छा माता पिता नहीं भी हो तो हमारे पिताजी जो वसुदेव उनके मित्र तो है ही हैं, हमको उनकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए अच्छा कल चलेंगे हम। और फिर अक्रूर जी नंद बाबा से मिले, उनको बतलाया और उनको भी प्रेरणा दिया कि आप कुछ उपहार लेकर के चलें, नहीं तो कंस कृष्ण का अनिष्ट कर सकता है, और उपहार लेकर के चलेंगे उसको खुश रखेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। नंद बाबा जी ने भी घोषणा कर दी कि हाँ अब चलना है, जाकर के कंस को कर दे करके धनुष यज्ञ देख करके हम लोग लौट आएंगे, कृष्ण को भी ले आएंगे। यशोदा मैया सुनी और ब्रजवासी सब सुने, गोपियों ने सुना तो बड़े जोर से रोने लगे। अब ये जा रहा है, अब यहां से वहां से लौट करके नहीं आएगा। यशोदा मैया ने अपने खाट पलंग के नीचे कृष्ण को छिपा दिया, नंद बाबा ढूंढने लगे, फिर बड़ी शपथ खाई, मैं खुद जा रहा हूं, मैं उसको खुद जरूर लेकर के आऊं, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करके कहता हूं ये तुम्हारा पुत्र लौटा करके ला दूंगा। किसी प्रकार से यशोदा जी को मनाया, किंतु गोपियों को नहीं मना सके। दूसरे दिन अक्रूर रथ लेकर और उनके दरवाजे पर रखा, और उस समय में सब गोपियां भिल भिलाने लगी, रोने लगी। मैं कहे यशोदा जी की भी मति भ्रम हो गई है, वहां जाएगा और वे लोग उसे कहेंगे ये हमारा पुत्र है, और वहां का ऐश्वर्य देख करके हो सकता है कि बेटे फिर न लौट आ भी सके। बहुत विलाप करने लगी, घोड़े के सामने आ गई, कुछ गिर गई, पीड़ा के मारे व्याकुल हो गई। कृष्ण ने उनको सांत्वना दिया कि मैं आज जा रहा हूं, कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा। इसलिए उस स्थान का नाम जहां पर कहता वो शिपलसो अभी भी है। सब ब्रज में जितने भी नाम हैं सब लीला के ऊपर में नाम है, जितने भी नाम है। उस समय जो जो लीलाएं हुई वो सब के ऊपर में नाम है। शिपलसो माने पलसो माने परसों मैं आऊंगा, वो स्थान। और विशाखा जी का गांव, ऊंचा गांव, नंद गांव, सब लीला के ऊपर में सब रखे गए। वहां पर परिक्रमा करने से तब मालूम होता है। किसी प्रकार से प्रतिज्ञा की, जब वो बेहोश हो गई रथ के आगे चारों तरफ में, अक्रूर रथ वहां से लेकर के इधर से उधर भगाता हुआ घासों पर लेकर, जैसे कि कोई पहिए का निशाना न बन जाए, और इस तरह से भगा करके किसी प्रकार से मथुरा में आया। नंद बाबा भी अपने छकड़े पर गड़ी पर गोप कुमारों के साथ में, सखाओं के साथ में वहां पर उपस्थित हुए। शाम हो गई। इसके बाद में कंस के नगरी को घूमने के लिए निकले, और वहां की जो लीलाएं हैं हुई हैं आप सब संक्षेप में जानते हैं। किस प्रकार से कुब्जा को रूपवती बनाया, वो कुबड़ी थी आठ अंगों की, और उसने चंदन कृष्ण को लगाया। चंदन लगाते हैं, कृष्ण ने उसकी थोड़ी पकड़ी और पैर पर एक पैर रख करके पीछे से हाथ ऐसा दिया, परम सुंदरी रूपसी बन गई। धोबी जा रहा था कुछ कपड़ों के साथ में कंस के यहां, कृष्ण ने कहा जैसे ये बड़े सुंदर कपड़े हैं, ये मुझे दे दो, तो वो गाली गलौज करने लगा, ये महाराज कंस के लिए है, तुम चरवाहों के लिए ग्वालों के लिए नहीं है, तुम लोग तो पहनना भी नहीं जानते, क्या इसको पहने हो। तो कृष्ण ने अपने हाथ से ऐसा किया और गला उसका उतर गया।
वही धोबी
राम वाला इसी ने में धोबी आया। और इसके बाद में सुंदर एक दर्जी के पास में गए सुदामा, कहा जिसे इसको फिट करके हमें लगा सकते हो, तो उन कपड़ों का चादर दुपट्टा पहनने का एकदम फिट करके उनको ऐसा सजा दिया जो राजकुमार हूं। अब तक वाले थे बंसी लिए हुए, अब यहां पर आप कैसा बना दिया, राजकुमार जैसा। बंसी नहीं गई, वो तो ब्रज में ही छोड़ दिया गोपियों के पास, और मोर मुकुट भी अब छोड़ दिया। अब यहां पर राज सिंहासन वाले वेश को यहां से धारण किया और उसको भी हाथ रख दिया, और वो मुक्ति लाभ करके चला गया। इसके बाद में जब मथुरा नगरी में प्रवेश किए तो स्त्री और पुरुषों को बात किया, अंधे भी अंधे को कह रहे हैं ये भाई चलो जरा कृष्ण आए हैं, चलो देखें कैसा सुकुमार, ये वसुदेव जी का पुत्र बहुत दिनों के बाद आ जाया है, बहुत ही सुंदर और बेला है, चलो देखा है। तो अंधे भी जा रहे हैं देखने के लिए। जो स्त्रियां श्रृंगार कर रही थी जादुओं की पत्नियां, एक आंख में अंजन लगाई, भाई छोड़ो अब जल्दी से चलें, नहीं तो कृष्ण चले जाएं। बहुएं भी जहां का तहां श्रृंगार सब छोड़ दिया, सभी लोग जहां जो थे अटारियों पर चढ़ करके खिड़कियों के सामने इधर उधर कृष्ण और बलदेव जी को सखाओं के साथ में मथुरापुरी में घुसते हुए देख रहे हैं। उस दिन घुस करके फिर कंस का जहां रंगशाला थी वहां पर पहुंचे। सामने में कुबल्या पीड़ हाथी को रखा था, जो कृष्ण बलदेव आए तो उनको मार करके खत्म कर देना, वहीं पर लीला समाप्त हो जाएगी। और इन्होंने उस हाथी को छकाकर उसे मार करके उसका दांत उखाड़ लिया, दांतों से ही मारा। फिर अखाड़े में पहुंचे, इधर सुनो उधर मत देखो, थोड़े से में चित्त चला जाता है। वहां पर बड़े लंबे चौड़े दक्षिण देश के मल्ल लोग, वहां पहलवान पहाड़ जैसे चारुण और मुष्टि खड़े थे। कृष्ण को देखते ही देखते और ताल ठोक करके बुलाने लगे, आ जाओ महाराज कंस को हम लोग प्रसन्न करें। महाराज कंस यहां पर बैठे हैं ऊंचे पर और हम लोग मल्ल कीड़ा के द्वारा उनको प्रसन्न करेंगे। कृष्ण ने कहा जी हम अपने सम वयस्क की जो लड़के हैं उनसे लड़ेंगे, आप लोग कहां इतने बड़े बड़े धनुर्धर, ये बड़े बड़े पहलवान पहाड़ जैसे मोटे तगड़े ऊंचे कसरत किए हुए हैं और हम लोग तभी अभी दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे हैं, अभी 10 वर्ष 9 वर्ष की उम्र, इसलिए हम अपने योग्य लोगों से लड़ेंगे, आप लोग लड़िए। उन्होंने कहा जो पुतना को मार सकता है, अघासुर को मार सकता है और सब बड़े बड़े पहलवानों को मार सकता है, वो साधारण तुम लोग नहीं हो, मल्ल कीड़ा अपने ब्रज में सब सीखते हो, जो गोवर्धन को धारण कर सकता है वो साधारण नहीं है, आप आइए। बस उनको हाथ पकड़ करके खींचा कृष्ण को और बलदेव को, इनको भी ताव आ गया, अखाड़े में आए। उसमें लोगों ने देखा क्या है, बहुत विभिन्न प्रकार के लोगों ने मल्ला नाम अश्विनी, जो मल्ल थे लड़ाई करने वाले चारुण मुष्ट, अरे ये तो वज्र के समान है, भयंकर तो देख करके डर गए। साधारण लोग जो थे उन्होंने देखा आह कितना सुकुमार भोला भाला प्रिय लड़का है। पिता ने नंद बाबा वहां पर थे वसुदेव और जो उम्र में बड़े थे उन लोगों ने देखा अरे ये तो छोटा सा शिशु है, हमारा बेटा जैसा है। स्त्रियों ने कैसा देखा, कामदेव से भी अधिक सुंदर रूप देखा। योगियों ने देखा ये तो परब्रह्म है। कंस ने देखा साक्षात हमारी मृत्यु है। और गोप जो सखा थे उन सखाओं ने कहा ये तो हमारा क्या है, सखा है। और जदु लोग जो वहां पर थे जादो लोग, उन्होंने कि हमारे ही उपास्य देव हैं। इस प्रकार से 12 प्रकार के लोगों ने कृष्ण को उसी समय में 12 रूपों में देखा, जैसे जिस रही भावना जैसी हरि मूरत देखा कैसी। इसलिए कृष्ण जो हैं ये साधारण नहीं है, इसलिए कृष्ण को ऐसा मत समझिए कृष्ण की सेवा करने से हमको धन नहीं देंगे या कृष्ण की सेवा करने से भी हमको कात्यायनी जी की पूजा करनी है, हमको दुर्गा जी की पूजा करनी है, हमको संतोषी मैया जी की पूजा करना है, हमको गणेश जी की जरूर पूजा करना है, सरस्वती की पूजा नहीं करने से विद्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं। ये समस्त अवतारों के अवतारी, इनके चरण की धूलि से ये सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इन गोपियों को साधारण मत समझना, ये लक्ष्मी की भी लक्ष्मी उनको भी वर देने वाली है गोपियां। इसलिए कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। कृष्ण की बात छोड़ दो, कृष्ण के अंश हैं बलदेव, उनके अंश हैं मूल शंकरसन द्वारका वाले, उनके अंश हैं नारायण के पास में रहने वाले महाशंकर, उनके एक अंश हैं जिनसे ये सारा विश्व निकला है, उनके अंश के अंश जो हैं कला इत्यादि हैं, जो जीवों के हृदय में वास करते हैं उनका नाम है विष्णु। जो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के कला के विकला हैं, जिसे ये सृष्टि होती है, ये सब कुछ ब्रह्मा इत्यादि सब करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों विष्णु और शंकर पैदा होते हैं, ऐसे ये जो हैं ये विष्णु तत्व हैं। और विष्णु भी कोटि कोटि, एक दो नहीं करोड़ों विश्वों में करोड़ों विष्णु भी उनकी उपासना करते हैं इस कृष्ण की। इसलिए कोई कामना बाकी नहीं रह जाएगी इनसे करने से, सब कुछ हो जाएगी, ऐसा विश्वास रखो। यदि भागवत सुन करके ये विश्वास नहीं हुआ तो परीक्षित जैसा सुना नहीं, ये समझ रखो। तब तो परीक्षित जैसे परीक्षित जी सब छोड़ करके कृष्ण के चरणों में एकदम समर्पित हो गए, ऐसे भागवत सुन करके कृष्ण में ऐसी जिसकी बुद्धि है तब तो होगा, और नहीं तो साधारण फल होगा, जो मांगोगे वही देगा। कृष्ण कैसे हैं, वंशा कल्पतरु, कल्पतरु माने क्या, कल्प वृक्ष। एक राजा था इस जगत में, कई शिकार खेलने गया और जंगल में पहुंचा, वहां कोई कल्प वृक्ष था, जो कुछ मांगो वही दे देगा, कल्प वृक्ष माने होता है। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे हठात भूखा प्यासा शाम को पहुंचा। उसने सोचा जी अब तो शाम हो गई, अब बड़ी भूख लगी है, प्यास लगी है, कहीं से अच्छा स्वादिष्ट कुछ मिल जाता पानी और कुछ भोजन करने का, बड़ा अच्छा। इतने में देखा जो थाली में लगी हुई बड़ी सुंदर, जैसा अच्छा से अच्छा हो सकता है, और उसके सामने थाल परोसा वो आ गया, पानी भी आ गया, खा पी लिया। एक पलंग रहा था तो मैं सो जाता, इतने में पलंग आ गया तो सो भी गया। इतने में सोच रहा जी तो रात बड़ी अंधकारमयी है, कहीं बाघ ना आ जाए। इतने में बाघ आ गया, देख करके डर गया, कहीं हमको खा ना ले, बस क्या हो गया, बस हो गया ना, लीला समाप्त, ये है तो कल्पतरु। किंतु कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण ऐसे वंशा कल्पतरु नहीं है। वो केवल क्या करते हैं, जैसे हमारा कल्याण होगा ऐसा देते हैं। यहां तक कि ब्रज में अपनी प्यारी गोपियों का जो भाव है उसको दे करके भी ले सकते हैं, इतने बड़े दयालु हैं, जो और किसी के लिए संभव पर नहीं है। इसलिए कृष्ण को साधारण मत समझना, तुम्हारी जितने प्रकार की इच्छा है उनको छोड़ने से, किसी को छोड़ने से भी कृष्ण की पूजा करने से उसमें सभी रहते हैं। एक भक्त था, बृहद भगवतामृत में आया है ऐसा उल्लेख, जो पहुंचते 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 गोपाल का मंत्र करता था, ये गोपाल मंत्र है ना, ये करता था, करते 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 राम लोक में पहुंच गया और राम के साथ में बहुत दिन रहा। फिर इच्छा, वो मंत्र जपने के प्रभाव से वो और आगे बढ़ना चाहा, वो वहां से द्वारका जाना चाहा, तो रामचंद्र जी ने खुद कहा जी देखो मैं ही द्वारकाधीश हूं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, बस मेरी कृपा से तुम जाओ। इसलिए राम बढ़ा दे, अलग नहीं है, जब राम ही उनसे अलग नहीं है, कोई भी उनसे अलग नहीं है, इसलिए जो भी इच्छा होगी वो संपूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। इसके बाद में वहां पर युद्ध होने लगा, कृष्ण ने उसे खिलाया को खिलाया, कभी ऐसे कर रहे हैं कभी ऐसे कर रहे हैं, फिर रस आस्वादन करने लगे, बड़ा भाव आया उनको और बलदेव जी को। उसने वो किंतु मारना चाहता था जान से इनको। जब उन्होंने ऐसा मारा जिसे कि यहां छाती पर जो कृष्ण मर जाएं या बलदेव मर जाएं, तो कृष्ण को ऐसा रोष हुआ, बस उसे पैर पकड़ा और घुमाया और घुमाते ही प्राण निकल गया, फिर नीचे गिर गया। वैसे बलदेव जी ने भी उसको, जितने भी और वीर थे उन लोगों को, मिनटों में मारा। इधर मैं कंस देख रहा था, मल्ल युद्ध अब बंद हो, बंद करो, नंद को पकड़ लो, वसुदेव जी को पकड़ लो, इसको यहां से एरेना से बाहर कर दो, मैदान से बाहर कर दो इन दोनों को। और इसके पहले ही अब तो कोई लड़ने वाला नहीं था, अब तो सबको मार गिराया और कुछ भाग गए। तो कृष्ण ने सुबल सखा को और श्रीधाम को और बलदेव जी ने अपने किसी मित्र को पकड़ लिया और अखाड़े में खुद लड़ने लगे। अब टक्कर की युद्ध होने लगे, उनको तो मार दिया मिनटों में, और सीतामा जी ने कृष्ण को पछार करके नीचे गिरा दिया, और बलदेव जी को भी ऐसे सुभद्र जी ने, जो कंस को के सब पहलवानों को क्षण भर में मार सकते हैं, किंतु अपने सखाओं से हारने में भी बड़ा आनंद। अब कंस ने सख्त ऑर्डर दिया, जल्दी बंद करो और इनको पकड़ो, इसे बाहर करो। कृष्ण अच्छा, बस वहीं से छलांग मारी और करीब 20-25 फीट की 24 फीट और भी ऊंचा वो सिंहासन पर बैठा हुआ देख रहा था। बस उछल करके शेर के समान में उछले और झट उसको पकड़ लिया। वो तो इधर उधर भागने लगा युद्ध करने के लिए, मौका नहीं दिया, एक सेकंड के अंदर में उसका ये पकड़ लिया और पकड़ करके नीचे गिराया वहां से, और उसके ऊपर में खुद पड़े दोनों पैरों से उसके इसके ऊपर, बस उतने में ही वो मर गया। किस लिए उसका चोटी पकड़ा? इसी हाथ से तू हमारी मैया का चोटी पकड़ करके मारने जा रहा था, इतना ही बल तुम्हारे अंदर में, तो देखो। और उसके ऊपर में कूद गए, कूदने के साथ ही साथ वो मर गया, मारा नहीं, कोई प्रयास नहीं किया, उसके ऊपर में कूद गए केवल, मर गया। जब मर गया तो देखा जीवित है कि नहीं, तो पैर थोड़ा सा पकड़ करके ऐसे खींचा तो देखा जिसे प्राण नहीं, सब शरीर उसका चला रहा है। और अब तो हाहाकार मच गया वहां पर, हाहाकार मच गया, बड़ी बड़ी भारी हो गई। उसकी दोनों रानियां थी कंस की, वो हाय हाय आज हम लोग अनाथ हो गए, तुम क्यों इनसे लड़े, क्यों इनको बुलाया, और हाय हाय करने लगी। कृष्ण ने उन दोनों को सांत्वना दिया, और फिर सबको सांत्वना देने के बाद में कंस को लेकर के ले गए ध्रुव घाट पर और उसका अंतिम संस्कार कराया अपने सामने, और फिर विश्राम घाट में स्नान किया, विश्राम किया, और फिर लेकर के वहां पर पहुंचे। और इतने में अक्रूर जी महाराज उग्रसेन राज सम्मान की सारी चीजें लेकर के राज्य तिलक और कंस को देने, कृष्ण को दे रहे थे। अब राजा यहाँ का कृष्ण है, आज से मथुराधीश हुआ, हम लोगों के सूरसेन वंश का जादुओं का राजा कृष्ण हुआ, ये करने के लिए आ रहा थे। कृष्ण ने वो थाली हाथ से ले ली और उन्हीं को, उग्रसेन को, कंस के पिता को, वह जैसा दुष्ट कंस किंतु उसके पिता को राजगद्दी पर बिठा दिया। राज के लिए मैंने नहीं मारा, ये राज्य क्या है, और उनको राजगद्दी पर बैठा करके राज तिलक कर दिया और बोले जे हम तुम्हारे दास हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा हम चलेंगे, विश्व के सब लोग जितने बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग हैं आपके चरणों में बहा देंगे, आप हमें आदेश दीजिए क्या करें। वो तो रोने लगे बेचारे, इस प्रकार से उसको मार करके भी राज्य नहीं लिया, क्या लेंगे, विश्व ब्रह्मांड के समस्तों को भी अपने आप जिसे निकलती है ये सृष्टि होती है। अब तो नंद बाबा एक दिन हो गया मारने के बाद में, अब उधर तो उत्सव होने लगा। इधर नंद बाबा बैठे हैं गाड़ी लेकर के, जो हमारा बेटा आएगा, हमारा बेटा आएगा और तब उसको लेकर के हम चलेंगे। उन लोगों ने आने नहीं दिया। वो लोग कह रहे हैं देवकी आकर के पकड़ लिया तो मेरे बेटे बहुत दिनों के बाद में आए, मैं तुमको दूध भी नहीं उस समय पिला सकी, तुमको आते ही कंस के डर से तुमको वहां भेज दिया, अपने पापों से ये मारा गया। बस देव जी भी उस समय में नंद बाबा वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन शाम को जब अंधकार हो गया तो कृष्ण और बलदेव चुपके से उनको बिना कहे हुए यहां मथुरा नगरी के बाहर यमुना के किनारे गाड़ी के नीचे बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे, रो रहे थे नंद बाबा। वहां पर पहुंचे दोनों और उनके चरणों में प्रणाम करके और अगल बगल में बैठ गए। कृष्ण बैठ गए बाएं और बलदेव जी उनके दाहिने जंघों पर बैठ गए। इधर नंद बाबा तो बड़े जोर से रोने लगे, तुम लोग भी मुझे भूल गए, बाबा मैं क्या करूं, ये तो कहते हैं कि जो तुम हमारे बेटे हो उनके बेटे, हमें विश्वास नहीं, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग आए हैं, अभी गाड़ी जोड़िए और अभी चलिए, ठहरने की जरूरत नहीं। बलदेव जी ने कहा हमें भी कहते हैं और कृष्ण को भी कहते हैं कि तुम हमारे बेटे हो, मैं तो यहां एक क्षण भी नहीं रह सकता, आप कृष्ण को लेकर के चले जाएंगे तो मैं अभी तुरंत चला जाऊंगा, एक सेकंड नहीं रहूंगा। नंद बाबा बोले जे बेटा जल्दीबाजी मत करो, इसके सारे पुत्र मारे गए हैं, कंस ने मारा, अब तुम ही एकमात्र पुत्र बचे हो, इसलिए कुछ दिन ठहर जाओ, इनको सांत्वना दे करके तब आना, हम कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं पीछे से। उन्होंने कहा जी एक सेकंड नहीं ठहर सकता। तो कृष्ण से पूछा जी मैं क्या करूं, बलदेव जाएगा तो ये दोनों मरेंगे और साथ साथ में जितने यहां पर जादव के लोग हैं सभी मरेंगे, मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण ने कहा जी ऐसा कीजिए कि मुझे भी दो दिन के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो बलदेव तो मानेगा नहीं, और यदि बलदेव यदि मैं गया तो बलदेव जरूर जाएंगे, तो इसलिए अच्छा है कि मैं भी रह जाऊं दो दिन और इनको सांत्वना दे लूं और फिर बलदेव के साथ में हम लोग आ जाएंगे, नहीं तो सभी मर जाएंगे और मरने जब मरेंगे इसका पाप आप पर लगेगा क्योंकि आप लेकर के जा रहे हैं, नहीं जी नहीं मानने पर भी बाध्य होकर के उनको मानना पड़ा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, गहने ले आए, सब सोने के अलंकार इत्यादि वस्त्र ले आए और नंद बाबा की पगड़ी की जो कपड़ा होता है उसमें सबको बांध दिया। बोले जी मैया को दे देना, मैया मैं तो परसों आ ही रहा हूं, परसों जरूर आ जाऊंगा, तब तक लेकर के दे देना। नंद बाबा सोच रहे हैं जब मैं क्या कहूंगा, जैसे हमें बेच करके आया इस सोने के रूप में अपने बेटों को, किंतु दे रहा है, मैं इनकार करूं तो भी गड़बड़। बड़े रोने लगे, बड़ा विरह हुआ वहां, किसी प्रकार से बतलाओ सुनी गाड़ी लेकर के कैसे लौटे होंगे और ब्रज में क्या स्थिति होगी। इधर क्या होता है, इन लोगों ने देखा जैसे किसी प्रकार नंद जी को भेजा, वो लोग तो चले गए, जल्दी से इसका मुंडन करके उपवीत संस्कार कराओ। उपवीत संस्कार कौन कराता है, बाप कराता है और मैया कराती है, तो इसको ये प्रतीति हो जाए कि मेरा बाप ये वसुदेव जी है और मैया कौन है, देव। नहीं तो ये ब्रज की चिंता करता है, यशोदा जी मेरी मैया है, ब्रज हमारा घर है, नंदगांव हमारा गांव है, इस तरह से समझता है, और देवकी मेरी मैया है, यशोदा मेरी मैया है, अब यही सोचता है, इसलिए इसके संस्कार को बदल दो। इसलिए बदलने के लिए अपने घर का चार्ज पुरोहित को बुलाया, दिन देखिए तो दिन अभी आज ही ठीक है, देरी मत कीजिए, बस आज ही इसका यज्ञ पवित्र हो जाए। बस यज्ञ पवित्र होने लगा, मुंडन किया गया है। सांवरे कृष्ण और गोरे बलदेव जी अभी छोटी छोटी उम्र के, कितना हृष्ट पुष्ट शरीर। मुंडन किया गया, खड़ाऊ लकड़ी का दिया गया, उनको दंड दिया जाता है। दंड होता है ना यज्ञ पवित्र के समय में, दंड दिया जाता है। और बटू का विद्यार्थी का वेश बनाया जाता है, उस समय में पीले वस्त्र दिए गए। इतना सुंदर कृष्ण के ऊपर में लग रहा है और मुंडन हुआ, इतना सुंदर भवक रहा है, उनका तिलक लगाया गया, देख करके सभी मोहित हो गए। जब मुंडन इत्यादि हो गया, यज्ञ पवित्र हो गया, तो गुरुजी ने कहा अब जाओ पहले माता के पास में जाना और कहना माताजी हमें भिक्षा दीजिए, और पिताजी के पास में जाना, उनसे भिक्षा ले आना, और इसके बाद में जितनी भी माताएं हैं माताओं के पास में जाकर ये माता हमें भिक्षा दो, और पिताओं के पास में जाना हमें भिक्षा दो। जब उन्होंने आदेश दिया तो कृष्ण सोच रहे हैं ये मेरी मैया के पास में जाऊंगा। मैया ने कहा था कि तुम जब तुम्हारा उपवीत कराऊंगी तो तुम्हारे अंचल को झोली को सोने असरफियों से जवाहरातों से मैं भर दूंगी, और ये भिक्षा ले करके गुरु को देना। उनको याद आई मैया ने ऐसा कहा था। कौन मैया? यशोदा। किंतु आज तक यशोदा मैया नहीं है, झोली बनाया और मैया का चिंतन कर रहे हैं, मैया मैया देख रहे हैं, किंतु मैया तो वहां है नहीं। फफक करके रोने लग गए, मैया मैया कहते, और यही कहते हैं हाँ, झोली तो हाथ में रही, दंड हाथ में रहा, और मैया मैया कहते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। देवकी करिए, देखो तो मैं यहां पर हूं और मुझे मैया नहीं मान करके यशोदा को मैया मानते हुए और ये मूर्छित हो गया। सारे लोग वहां पर जितने थे उपस्थित सब रोने लगे। इस प्रकार से किसी प्रकार से उपवीत संस्कार तो हो गया। जैसे ये तो बड़ा भारी मुश्किल है, यदि यहां रहेगा तो ब्रज तो यहां से केवल कितना है, 2 अंगुल है, मथुरा और ब्रज की सीमा में कितना अंतर है, 2 अंगुल भी नहीं। तो यहां से सब समय ब्रजवासियों की याद करेगा, मैया की याद करेगा, बाप की याद करेगा, गोपियों की याद करेगा, इसको बहुत दूर किसी शैव गुरु के पास में भेजो और वो इसको पढ़ाए तो कुछ दिन के बाद में फिर ये ठीक हो जाएगा। इसको किसी प्रकार से मन भुलाना चाहिए। उसको गुरुकुल में भेजा कहाँ, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में भेजा। और गुरु कौन, सांदीपनी की यहां पढ़ने के लिए, जूती नहीं लगा सकते, खड़ाऊ नहीं ले सकते, छाता नहीं ले सकते, भी भिक्षा मांग करके ले आ करके गुरुवानु को देना होगा, और वो जो कुछ भिक्षा से उपलब्ध होगा उसे बना करके तब देगी। कठोर शासन कृष्ण के लिए। यशोदा मैया ऐसा नहीं कर सकती थी, ये सब किया गया उनको भुलाने के लिए। यज्ञ पवित्र हुआ किंतु सबको निमंत्रण दिया गया, कहां कहां, किंतु यशोदा नंद जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। क्यों? यदि आ गई तो लेकर के चली जाएगी। इसलिए यशोदा जी का क्या हाल है? इधर यशोदा जी अंधी हो रही हैं कृष्ण के लिए, बहुत अंधी हो रही हैं। नंद बाबा जी अब अपना चेहरा नहीं दिखलाते, घर में बंद हैं, खाना पीना सब बंद हो गया, किसके लिए रसोई बने। और अंत में यशोदा जी एक दिन दोपहर में कड़कड़ाती हुई धूप में, जेठ की दोपहरी में, कृष्ण के मार्बल के जो खिलौने थे, बंसी छोटी सी, उनकी लकटी जिसको वो पहनते थे, वो सारी चीजों को एकत्र किया और कहीं निकल रही थी। दरवाजे पर जब भी पहुंची, उनकी कोई सहेली आई, अरे सखी यशोदे तू कहां जा रही? तो मैं जा रही हूं जहां मेरा लाला है। कहां तुम्हारा लाला? यहां थोड़े बैठे है, वो तो बहुत दूर मथुरा में है, नंदगांव से बात है हो रही। तुम वहां पर कैसे जाएगी, क्या करेगी? तो मैं जाऊंगी रानी के वेश में, यशोदा के वेश में नहीं, एक साधारण स्त्री के वेश में। और यशोदा मैया के पैया, देवकी मैया के पैया पढ़ूंगी और उसे कहूंगी तू दिन में कभी एक बार अपने लाला का दर्शन करा दे, तेरे जूठे बर्तन मांजूंगी, घर में झाड़ू लगाऊंगी, सब काम करूंगी, कुछ पैसे मत देना, किंतु तुम अपने लाला का, हमारा लाला नहीं, अपने लाला का दर्शन करा। और कहते कहते गिर पड़ी दरवाजे पर। कहां जाएंगी मथुरा वो? ऐसे तो ये तो यशोदा मैया का, और ऐसे ब्रजवासियों की कैसी दशा होगी कल्पना नहीं कर सकते। रामचंद्र जी का है, बड़ा कर्ण रस है, किंतु मर्यादा में बधा हुआ। रोएंगे आदमी, फिर दूसरे लीला सुनने के साथ में हंसने लगेंगे। और राधा कृष्ण की ऐसी विरह की लीलाएं हैं, एक बार रोना गया फिर सूखेगा नहीं। मत करना, ब्रज में कभी मत जाना है, और उनकी कृष्ण की कथाओं को मत सुनना। यदि रोना है तो सुनो, और यदि अपने बंधु बांधवों का प्यार भूलना है, यदि रहना है उनके साथ में बड़े आराम के साथ में हंसते हुए, तो कृष्ण का नाम मत लेना, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी दशा होगी जैसे गोपियों की दशा, दिन रात आंखें बरसती। उधो मन न भयो दस बीस, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। क्या तात्पर्य? उद्धव जी समझा रहे हैं और गोपियां कह रही हैं, उद्धव तुम बहुत ज्ञान की गठरी लेकर आया हमें समझाने के लिए, किंतु किसको समझा रहे हो? उद्धव मन न भयो दस बीस, हमारे मन तुम्हारे जैसे, तो बड़ा भारी सौभाग्यवान है, तुम्हारे मन जो है दस बीस प्रकार के हैं, और हमारा तो एक ही मन था, वो तो कृष्ण गया उसके साथ में हमारा मन गया, अब किसको तुम उपदेश दे रहा? ये तुम्हारा उपदेश देना बेकार का है। इसलिए कृष्ण की लीलाएं जो हैं अंतिम वाली इतनी विरह है। उद्धव जी आए, कुछ समझा पूरा नहीं समझा। प्रेम की पाठशाला में गए, कृष्ण ने उनको भेजा था किस लिए? पढ़ने के लिए, समझाने के लिए नहीं। कृष्ण स्वयं भी गोपियों को नहीं समझा सके तो वो ये उद्धव क्या समझाएंगे? उनकी ज्ञान की गुदड़ी को क्या किया? छी फाड़ करके जमुना में फेंक दिया, और जमुना से गया कहां? गंगा जी में, प्रयाग में मिल गया, और प्रयाग से कहां गया? वो धारा में बहता हुआ समुद्र में, नमकीन समुद्र में जाकर के सड़गल करके समाप्त हो गया। गोपियों को इस ज्ञान से क्या लेना देना? इसलिए कृष्ण भी नहीं समझा सके तो ये उद्धव क्या समझाएंगे? प्रेम का पाठ पढ़ा और देखा जी कितना महान इनका प्रेम है, जो कहीं विश्व में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। इसलिए भागवत के श्रवण करने से ऐसा प्रेम आ जाएगा। राधा जी कृष्ण की गोद में बैठी हैं और कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ऐसा कहीं प्रेम होता है? गोदी में बैठी हुई कृष्ण को ढूंढी, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए, बेचैन हो रही। ये महाभाव है, कृष्ण इस चीज को समझना चाहते हैं, ये कैसा प्रेम है जो हमारी गोदी में बैठी हुई हमको खोज रही, और मैं इनको सांत्वना नहीं दे रहा, ये कैसे होता है? ये होता है जिसके अंदर में प्रेम है वो तो कृष्ण को समझ सकता है। प्रेम के बिना कुछ नहीं होता। प्रेम कंस में नहीं था, इसलिए कंस कृष्ण को देख करके क्रोधित को उनको मारना चाहता था। यह प्रेम दुर्योधन में नहीं था, ब्रजवासियों में था। ब्रजवासियों में भी यशोदा मैया में सबसे अधिक प्रेम, किंतु उससे भी करोड़ों गुण किस में है? राधा जी में। कृष्ण जी राधा जी को प्यार करते हैं, महत्वपूर्ण चीज समझो। यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रजवासी सब लोग कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण भी उनको वैसे ही करते हैं, दोनों दूसरों को प्रेम करते हैं, गोपियां भी कृष्ण को प्रेम करती हैं और कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते हैं, किंतु गोपियां पागल हो जाती हैं प्रेम में, कृष्ण गोपियों के प्रेम में पागल नहीं होते, पागल नहीं हो पाते। क्यों? सेवक में सेवा का भाव रहता है, प्रेम एक चीज है, प्रेम ही मालिक है, एक प्रेम का विषय होता है और एक प्रेम का आश्रय होता है। प्रेम के विषय कौन है? कृष्ण। और कहां पर प्रेम है जो कृष्ण की सेवा करता है? गोपियों में सबसे अधिक, वैसे सारे भक्तों में है, नीचे से ऊपर तक सारे भक्त प्रेम के आश्रय हैं, किंतु सर्वोच्च प्रेम का जहां भाव है वो राधिका जी है, कृष्ण में है प्रेम राधिका जी के प्रति, किंतु राधिका का कृष्ण में जैसा प्रेम है वैसा कृष्ण को नहीं है, नहीं तो जैसे राधिका जी की अवस्था है वैसे उनकी भी हो जाती, उनकी ऐसे नहीं होती। क्यों? राधिका जी ने अपने पिता को छोड़ा, मैया छोड़ा, बाप माता छोड़ा, पति छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया और एकमात्र कृष्ण को अखंड रूप से प्रेम किया। आ रहा है समझ में? कृष्ण ने अखंड छोड़ करके, राधिका जी ने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके कृष्ण को, अकेले कृष्ण को प्यार कर रहे हैं। कृष्ण जी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? कौन से भक्त को छोड़ेंगे? छोड़ नहीं सकते। नंद बाबा को छोड़ेंगे ना, ब्रजवासी सखाओं को छोड़ेंगे ना, हनुमान को छोड़ देंगे ना, उनकी राजमहिषियों को, सत्यभामा रुक्मिणी को छोड़ेंगे ना, एक भजन कर रहा है अभी नया उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। जो जितना जिस रूप में भजन कर रहा है उसके ऊपर आंख उतर है, किंतु राधा जी के लिए सर्वस्व सब को छोड़ करके कृष्ण में प्रेम करेंगे, ये कृष्ण में चीज नहीं है, इसलिए गोपियों के ऋणी है। इस चीज को समझने के लिए बहुत चाहिए। हमने 60-80 बरस तक कुछ कुछ थोड़ा सा समझा, इसको समझाना बड़ा भारी कठिन है, जब तक कि एकांतिक भावना। अभी तक मैं कहता हूं ये भाई गांजा भांग छोड़ दो तो वही नहीं छोड़, अच्छा ये दुर्गा जी की पूजा छोड़ दो, कात्यायनी की पूजा छोड़ दो, यही नहीं छोड़ता है। और हम लोग गुरु की सेवा करते 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 80 वर्ष तक सेवा करके कुछ हासिल किया, यही आप लोगों को मैं नहीं दे पाता। तो इतनी ऊंची चीज कृष्ण का प्रेम, राधा जी का प्रेम, कृष्ण को कितना प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, कृष्ण को भी पता नहीं। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके इस चीज को समझने के लिए आए। ललिता जी के, विशाखा जी के स्कूल में पढ़े, एडमिशन करा, प्रेम को समझा, तब उसके प्रेम को थोड़ा थोड़ा समझे महाप्रभु जी के रूप में, तब गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में वो विकल होकर के मूर्छित हो जाते, कहते जी आज हमने बंसी सुनी है और कहां समुद्र में चले जाते, कहां सात डोढ़ियों को पार करके न जाने कैसे चले जाते इधर उधर। उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने राधा जी से भिक्षा मांगी, जी तुम अपना भाव हमको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए दे दो, अपना रूप दे दो, वही रूप और भाव लेकर के। और तब नवदीप में अवतीर्ण हुए थे महाप्रभु को जाने बिना प्रेम हम समझ भागवत समझ में नहीं आएगी, इसको भी समझो। इसलिए यह प्रेम बहुत ऊंचा है, उसका हमने थोड़ा सा भी थोड़ी सी बात बतलाई, यदि फिर अगले वर्ष आएंगे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी धीरे धीरे बढ़िए। कृष्ण की पूजा करने से तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। वहां पर विष्णु के लिए बतला रहा था, मैं बीच में भूल गया था, विष्णु कौन? कृष्ण के कला के, कला के विकला के अंश के अंश हैं। और एक समय में, जरा इधर सुनो, एक समय देवताओं में चर्चा चली कि समस्त देवताओं में बढ़कर के कौन है, क्या हो गया? तुम लोग सुनो तो एकाग्र, ऐसे सुनो किंतु मन वहां है, क्या हो गया? तो देवताओं में चर्चा चला कि सबसे देवताओं में बड़ा कौन है, और यह भार दिया गया भृगु ऋषि के ऊपर। आप बहुत बुद्धिमान विद्वान सब प्रकार से योग्य और भक्त हैं, आप इसका विचार कीजिए। तो वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, और ये भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आज ब्रह्मा जी को अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किया और झट जा करके उन्हीं के आसन पर बैठ गए, प्रणाम तक नहीं किया। ब्रह्मा जी बिगड़े, इसे आज तुम पागल हो गया, आज प्रणाम नहीं किया और आयत से दंड होकर के बैठ गया, अभी तुमको दंड देता। तो वहां से दौड़ करके चले, भाग करके आए शंकर के। शंकर जी के पास में आए और उदंड होकर कहेंगे क्या गजड़ी भगेड़ी, मुंडमाला पहना हुआ है और मुर्दा मुर्दों को जला करके राख यहाँ पर मल रखा है, और वो होती है ना मरने का वो जो ठोली
खोपड़ी
यहाँ सब लगा करके आया है पागल जैसा। अंट संट करके तो उसको बोलने लगे, तो शंकर जी बोले त्रिशूल लिया जैसे तू बड़ा उदंड है। अच्छा ठहर, वहां से भगे और वहां से आकर के बैकुंठ में पहुंचे नारायण के यहाँ, विष्णु के यहाँ। और विष्णु वहां पर क्या कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी बड़े आराम के साथ में, बड़े आराम के साथ में सोए थे आंखों को बंद करके। बस भृगु जी आया और देखा न इधर न उधर, और उनकी छाते पर एक लात मारा। वहां तो थोड़ा सा देखो जी कैसे किया, यहाँ पर एक लात मारा, उनकी आंख खुली और साथ ही साथ उनके चरण को पकड़ा। महाराज हमारा हृदय बड़ा कठोर है पत्थर जैसा, आपको चोट लगी होगी हमें क्षमा करें और माफी मांग ले लें। अब तो वो बड़े लज्जित हुए, कहा जे प्रभु आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हमको यही बतलाना था जगत में। ये लोगों में क्रोध आ जाता है थोड़ी सी अपमान करने में, और आपको एक लात मारा तो अभी नहीं, किंतु ये विष्णु हैं कौन, कृष्ण के अंश के अंश के कला के विकला है, जब इन्हीं यही सभी देवताओं में श्रेष्ठ है तो कृष्ण की बात क्या है, इस चीज को बतलाने के लिए मैं। इसलिए सब शास्त्रों ने मिल करके यह निर्णय दिया, समस्त देवताओं ने सब लोगों ने, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, इनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। आपको पता होगा द्रौपदी जी काम्य वन में थी पांडवों के साथ में वनवास के समय, ये दुर्वासा ऋषि जी साधारण नहीं है, बड़े क्रोधी हैं। एक दिन दुर्योधन ने इनको निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे करके उनको खूब खिलाया पिलाया, वो तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा जैसे बर मांगो, उसने बर मांगा जी इस समय पांडव लोग वन में हैं, आप कृपया 60,000 शिष्यों के साथ में दोपहर में जब द्रौपदी का भोजन समाप्त हो जाता है तो वहां पर भिक्षा के लिए पधारिए, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं ये लोग, इनका कल्याण हो आपके जाने से। किंतु किस लिए भेज रहा था, द्रौपदी जी खा ले बटुआ माज लें और इसके बाद में आप जाना। मैं कहा जय ओम अस्तु, ऐसा ही होगा। उन्होंने सोचा कि उस समय कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा और ये बिगड़ जाएंगे और उनको अभी संपा दें वो जल करके भस्म हो जाएंगे, इस नियत से भेजा। दुर्वासा जी वहां पर गए, 3 बज चुका था, एक उनको हाड़ी मिली थी सूर्य से जिसमें वो रसोई बना करके रख दे और लाखों लोग आए सबको खिला देगी, जो इच्छा होगी वही खिला देगी। किंतु जब सबके खिलाने के बाद में अपने भोजन कर लेगी और उसको मांझ करके उलट करके रख देगी तो उसे कुछ नहीं आएगा, और नहीं तो हजारों लोगों को तृप्त कर देगी। उस दिन सबको खिला पिला करके, पांडवों को भी खिला पिला करके, अतिथियों को खिला करके और उसको मांझ करके अच्छी तरह से और उल्टी औंधी करके रख दी। जब 3 बज चुका तो दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों के समेत वहां पर उपस्थित हुए, बोले आज मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे घर में जो कुछ बना है हमको खिला। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा आज तो हमारा परम सौभाग्य है, ऊपर से बोले सौभाग्य है, विमल कुंड है, अभी थोड़ा सा स्नान करके 1-2 मिनट में आप प्रस्तुत है, आप आ जाइए। ठीक, वो भी जानते थे जी हाड़ी मच चुकी है, गए स्नान किया, स्नान कर रहे थे, इधर में बड़ी चिंता हुई, 5 पांडव मिले विचार करने लगे, द्रौपदी को बुलाया क्या करना चाहिए, अभी आएगा नहीं खिला सकेंगे, वो तो जल करके भस्म हो जाए, वो ऐसा करे जटा उखाड़ेगा और कहां क्या हो जाएगा, कोई उपाय करो। उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, ये द्रौपदी के हाथ में है। द्रौपदी के सखा बड़े प्रभावशाली हैं, यदि उनको बुलाए तो हो सकता है। द्रौपदी जी ने अच्छा ठीक है। द्रौपदी जी रोने लगी और रोते रहते उनको बुलाया द्वारकाधीश को, जल्दी से आ जाओ नहीं तो हमारी अब प्राणों पर, अभी हमारे ये पांचों पति मारे जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराते हुए झट प्रकट हो गए। द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। खिलाया, घर में तो कुछ है नहीं, अरे ऋषि आने वाले हैं उनको खिलाना है, हमारे पास में कुछ नहीं। अरे हमको पहले खिला लो, तुष्ट कर दो, इसके बाद में हम देख लेंगे। तो हमारे है ही नहीं है कुछ खिलाए। अरे हड़िया तो ले आ, वो तो जानते थे हड़िया की बात। हड़िया में कुछ है नहीं, मैंने मांज मूंज करके भीतर से अच्छी तरह से औंधी रखी है। अच्छा ले तो आ। बस सखी कह करके उसको बुलाया, मंगवाया। हड़िया आई, हड़िया को देखा भीतर से, ऐसे देखा जी तीन का साग आज कैसे उसी में लगा रह गया, सब कुछ साफ है। साग बनाया था, कुछ था तो नहीं खाने का, साग बनाया उसी का तीन का लगा हुआ था। उन्होंने नख से भीतर से लेकर के किसी तरह से छुड़ाया और लेकर के मुख में दिया और पानी पिया खूब भरपेट, तृप्तोष्मी तृप्तोष्मी ढकार दिया और मुंह को ऐसे किया। पर ढकारने के साथ ही साथ में उनका पेट फूल गया, 7000 ऋषियों का। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, उन्हीं के क्या था? जगत तुष्ट हो जाएगा, इसलिए ठेकार आने लगा, पेट एकदम और फूलने लगा। सोचा जैसे अभी अब हम चल करके भोजन कैसे करेंगे। इसमें देखा जी भीम गदा लेकर के, कृष्ण ने भेज दिया ये जल्दी से उनको बुला लाओ, तैयार है रसोई। देखा जी आ रहा है, कहीं सुदर्शन तो ना आ जाए, याद पड़ी अम्बरीश वाली कथा। बस उल्टे पाव भगे, कहाँ भगे, इस पृथ्वी में नहीं रहे, सब लेकर के एकदम कहाँ ऋषि लोक में पहुंच गए जल्दी से। इधर भीम उनको देखा जे नहीं है, तंत्र में लौट करके आए, जो हो गया है काम, उनका पेट भर गया है। ऐसे ही तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, ऐसा सोचो भागवत पढ़ करके सुन करके, यदि कृष्ण की तृप्ति हो गई, कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, जितने सारे देवताओं की और देवियों की तो बात क्या है, सब अवतार अवतार सब कुछ प्रसन्न हो जाएगा, सबका उसका फल मिल जाएगा। हमारे ऋषियों ने वेदों में शास्त्रों में भगवान भागवत में ये याद है। सुदामा जी का अब तो समय हो गया 12:15 होने का, तो इसलिए याद रख वहां का सुदामा का, जो कृष्ण के सखाते पढ़ते थे। और हुआ क्या, वहां गए अपनी स्त्री के कहने से, बहुत कहने से गए, मैं मांगूंगा कुछ नहीं। अरे जाओ उसका दर्शन तो कराओ। गए कुछ दिया नहीं, सारी रात बात होते ही पैर धोवा खूब मल मल करके, चरणामृत भी लिया, घर में छिड़का, रानियां भी आई और सब उनको चमट धुलाई, सब कुछ हुआ, खिलाया पिला, किंतु एक धोती पीली भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दे, एक पैसा भी नहीं कुछ दिया। सोच रहे हैं ये देखो यहाँ आया, कुछ दिया तूने, या तो नहीं, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। क्यों, वो पका हुआ ऊपर में अंगूर भी है ना, तो लोमड़ी जो नहीं ले सकती उसके लिए क्या है, क्या, क्या है वो, ग्रेप्स ऑफ सावर, जब नहीं मिला तो क्या कहेंगे, वो खट्टा था, अच्छा हुआ नहीं मिला। तो ये सोच रहे हैं अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, नहीं तो मैं उनको भूल जाता, बड़े दयालु हैं भाई, बड़े दयालु। किंतु जब घर में जाएंगे ब्राह्मणी मांगेगी कुछ दिए, क्या हुआ तो मैं क्या कहूंगा, सोच तो रहे थे। और इसी तरह से कृष्ण ने उनको आकर के द्वारका के पुरी के अंतिम सीमा तक पहुंचाया। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा जी सुदामा जी अच्छा आप लौटिए, मैं अब चलूं। हाँ हाँ आप जाइए, आप ब्राह्मणी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो, किंतु दिया लिया कुछ नहीं। बड़ी मस्करी, कोई घर में अतिथि आए तुम लोग ऐसा मत करना, कुछ न कुछ जरूर दे देना। तो कुछ नहीं दिया। जब घर पर लौटे तो उनका घर का निशाना था एक गाय थी, वो भी दूध नहीं देती थी, हाड़ लगे हुए थे और गोबर अंत में लगा हुआ उसका, दूध नहीं देने वाली। और घर कैसा था, घर का पानी जब वर्षा होती थी बाहर में नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता था, क्योंकि छप्पर तो था ही नहीं, घर में चूहे नहीं थे, क्यों नहीं चूहा, अरे कुछ अनाज रहे तब तो अनाज तो था ही नहीं, बड़ी मुश्किल से कभी भिक्षा मांग करके ले आते, अरे हमारी कुटिया तो है नहीं कहाँ गई, और हमारी गैया तो देखते नहीं है, अरे यहाँ तो बड़ी काम धेनुआ कितनी 16108 काम धेनु बैठी है और 16108 ऐरावत हस्ती झूम रही है, घोड़े 16108 16108 महल बने हुए हैं। और देखा इतने में कुछ बड़ी सुंदरी युवती स्त्रियां मानो 16 वर्ष की, हजारों 16108 और बीच में एक परम सुंदरी वो थाल में सजा करके आरती और आ रही हैं, आरती गाते हुए और इन्हीं के तरफ, ये सब जाने लीजिए हमारे तरफ में क्यों, डर करके पीछे हटने लगे और वो आकर के इन्हीं को पकड़ लिया, पकड़ करके आरती करने यहीं पकड़ा। वो कम थी उनकी स्त्री, उसका दूध सूख गया था, स्तन भी सूख गए थे पहले, और आज रात ही में कृष्ण ने ऐसी कृपा की, वर्षा की, 16000 रानियों ने एक एक भाव दिए तो 16108, 16000 घोड़े, 16000 सब कुछ ऐसा हो गया। कृष्ण ने किसी को पता नहीं लगने दिया, उनको भी पता नहीं लगने दिया, और अंत में जब उसको पकड़ लिया तो ये परम सुंदर ये भी बन गए, हृष्ट पुष्ट बन गए। कृष्ण ने इनको क्यों नहीं बनाया, स्त्री पहचान ले वो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, स्त्री ने पहचान लिया जो वही वही दुबले पतले पैर में विवाह फटी हुई वैसे दरिद्र जैसे, वो सुदामा को तो पहचान लिया, और यदि कहीं सुदामा जी युवक हो जाते और वो ऐसे तो वो क्या समझती, रिजेक्ट कर देती ना। इसलिए कृष्ण जी कैसे चतुर कैसे दानी है, रात में किसी को पतला नहीं लगाना, और देखो क्या कर दिया, जैसे खेती सूख रही हो और सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ये वर्षा हो जाए, अधिकांश वर्षा कृषि प्रधान देशों में रात में होती है, कृषक रात में सोया रहता है और इधर में वर्षा हुई, चारों तरफ में पानी पानी हो गया है, अब उसका आनंद जब सवेरे देखा रही ये तो पानी भर गया चारों तरफ, अब तो मेरी खेती अब खूब होगी, धान की खेती करेगा और सब। रात में जैसे देता है, कृष्ण सोच रहे हैं मैंने इसको इतना दिया कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, हमारा तो आनंद वैभव है, इसमें से हमने दिया हमारा कुछ भी नहीं गया, किंतु इसने भिक्षा मांग करके इसके पास कुछ नहीं था, वो भी चिड़वा या चावल का कण दूसरों घर से मांग करके ले आई थी, और इसका हमने वो सब पूरा ले लिया, किंतु इसके बदले तो मैं अपना सब कुछ दे करके दरिद्र हो जाता तब तो होता, किंतु ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए मैंने इसको जो दिया है ये अभी लज्जा की बात, मैं पूरी के पूरी नहीं दे सका, इसलिए लज्जा से रात में दिया। इतने कृष्ण बड़े दयालु हैं, कौन ऐसा मूर्ख और मूर्खानी होगी, मूर्खानी माने क्या, मूर्खानी माने कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसे दयालु कृष्ण, ऐसे मधुर कृष्ण, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण का भजन नहीं कर करके इधर उधर दौड़ेगा ना? वो तो ऐसा है जैसे अपनी माँ की वंदना छोड़ करके किसकी वंदना करता है, वो वेश्या की वंदना कर रहा है, गंगा जी का पानी छोड़ करके नमकीन कुएं का पानी खारी पीता है, आ रहा है समझ में, क्या कहा, कहा क्या कहा, गंगा का अमृत का पानी उसको छोड़ करके कुआं खोज रहा है, प्यास लगी है, कैसा कुआं, खारी, जिसको कि और उसका पानी भर करके पीता है गंगा की, ऐसे ही लोग दुर्भागा है जो ऐसे कृष्ण को छोड़ करके दूसरों की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करके कुछ सुखी होना चाहते हैं, ये संभव है। इसलिए प्यारे भाइयों, बेटियां बेटियों, मेरे मित्रों, सखाओं, मेरे बंधुओं, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके इधर उधर मत जाओ। भागवत श्रवण का यही फल है, किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, कृष्ण का भजन करने से सभी उसमें आ जाएंगे। इसलिए प्यारे बंधु, आप लोग सभी लोग कृष्ण का यह नाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही आप लोगों सबसे कर्पित प्रार्थना है, सब लोगों से। हमारे पाठ का यही आप लोग श्रद्धा पूर्वक देंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए आया भारतवर्ष से। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं बच्चों, ऐसे कृष्ण का भजन करो जो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, तुम लोगों का जीवन सुखमय सुंदर मधुमय हो सके, जीवन में सुख हो, पर जगत में है आप लोगों का सुख, इसके अतिरिक्त और कहीं सुख नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को कथा सुना करके और तब बोले, जी साहब मैं जाऊं, ठीक है तुमको सांप नहीं स्पर्श करेगा, ये कह करके बस जिस दिशा में आए थे, क्या लिया वहां से, कुछ लिया, सभा में लाखों लोग थे, लिया उनकी श्रद्धा दी और उनको कृष्ण का ये भजन उपदेश सबको दिया। जितने ज्ञानी लोग कर्मी लोग सब लोग छोड़ करके भगवान का भजन किया और सबकी परलोक की गति हुई। यदि धुंधकारी की सभा में सभी लोग जा सकते हैं तो पर इनकी कथा में क्यों नहीं जाएंगे सुखदेव गोस्वामी। इसलिए आप लोगों को भी हमारा आशीर्वाद है, आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो और भगवान के चरणों में आप लोगों का भजन हो, आप लोग सुखी और शांति रहे। फिर अगले वर्ष आएंगे तो जहां से कहा है उसके बाद से लेंगे, बड़ी और सुंदर और मधुर कृष्ण की कथा है। गौर प्रेमानंद।